آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں.
جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر سلیم, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں فٹنس, ویل بینگ اور فوڈ کے حوالے سے. ان سے بات کریں گے. ایک تو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا میں آپ کو عمر. عمر یہ بتائیے, آپ فوڈ میں بھی کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, پھر فٹنس کے بارے میں بھی اور ویل بینگ کے بارے میں بھی, سب سے زیادہ کون سا آپ کو یونرا پسند ہے جس میں آپ کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟
فٹنس. فٹنس کا اس لیے کیونکہ مجھے فٹنس کا شوق ہے, آئی ایم اوبسیسڈ وتھ فٹنس, تو اسی کے بارے میں اگر میں کانٹینٹ بناتا ہوں تو آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف. اس وجہ سے جو ہے مجھے وہ فٹنس کا ساتھ فوڈ اور ویلنس تو آٹومیٹکلی آ چکا ہے لائف میں.
تو کیا ڈفرنس کیا آپ نے فیل کیا یہاں پر, اگر آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ پاکستان سے اوریجنلی جس طرح بتا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ فٹنس پہ کام کرتے تھے, اپنی دیکھ بھال آپ خود فٹ رکھنے کے لیے آپ کام کرتے تھے, اور یہاں پر یہاں کی سوسائٹی میں کیا دیکھا آپ نے؟
یہاں پہ کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہے. اگر یہاں پہ آپ کچھ کھا رہے ہو تو آپ کو بہترین کوالٹی کا ملے گا, اگر آپ کچھ پہن رہے ہو تو آپ کو بہترین کوالٹی کا ملے گا, اگر آپ جم جا رہے ہو تو آپ کو بہترین کوالٹی کی جم ملے گی, اگر آپ کو ایکسپوئر مل رہا ہے تو آپ کو بہترین کوالٹی کا ملے گا. یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ آسٹریلین کلچر ہے بیسکلی فٹنس, ہیلتھی ایٹنگ, ویلنس, ویل بینگ. پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے. پاکستان میں شاید آپ کو پتا ہو کہ وہاں باقی چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے, ترجیح نہ بھی دی جاتی ہے وہ ایک کلچر ہے وہاں پہ. فاسٹ فوڈ ہو جائے, رات کو ڈھابے پہ بے شک آپ جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ چار چار بجے تک, یہاں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ آپ کو کچھ ٹوٹلی اپوزٹ نظر آئے گا. یہاں پہ آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے آپ جاب پر جاتے ہو تو جاب کی بریک کے بیچ میں لوگ جاگنگ کرنے نکل جائیں گے. تو اس طرح کا کلچر جب ہوتا ہے تو بندہ خود بخود انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ ایک میجر ڈفرینس رہا ہے پاکستان ورسز
آسٹریلیا کے بارے میں. یہ بہت مشہور ہے کہ یہاں پر جو جتنے بھی لوگ ہیں کام کرتے ہیں, جب ان کو بریک ہوتی ہے, لنچ بریک ہو یا ویسے کام کے دوران بریک ہو, تو وہ جاگنگ پہ جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, رننگ کرتے ہیں. یہ کیسا آپ نے اس بارے میں کیا, آپ جب آپ بھی آفس میں کام کرتے ہیں تو یہ کیسا ٹرینڈ لگا فٹنس کو لے کر آپ کو؟
جی نہیں, یہ واقعی یہی جو چیز ہے یہی پش کرتی تھی کہ لوگ, کیونکہ یہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے, اٹس کلوز ٹو ہیومن نیچر. آپ جو چیز آپ کو اپنی ہیومن نیچر سے کلوز کرتی ہے وہ چیز آپ کو ویسے ہی بہت اٹریکٹ کرتی ہے. یہاں سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز مجھے لگی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں جو لوگ مارننگ روٹین کو فالو کرتے ہیں, یہاں ایک پراپر مارننگ روٹین ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو صبح چار بجے جتنا رش ملے گا اتنا آپ شام کو چار بجے نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ایک سب سے یہاں کی مزیدار بات ہے. پھر آپ نے ذکر کیا جس طرح جاب کے بیچ میں لوگ ایکسرسائز کرنے چلے جاتے ہیں. یہ ایک پرسنل نوٹ پہ بھی اگر میں بھی اپنے کولیگ سے ساتھ کام کر رہا ہوں, دس از ناٹ ایون اے لائی, یہاں ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے, اور میرے کولیگس بھی کرتے ہیں, اور وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے یہ چیز, آپ بھی اسی چیز کو انکارپوریٹ کرو اپنی لائف کے اندر.
تو جس طرح وہ فٹنس کو لے کے وہ بہت زیادہ اپنا خیال رکھتے ہیں, تو ساتھ اگر فوڈ کی بھی بات کریں تو کیا کیسا لگا یہاں پر آپ کو کہ فوڈ کے بارے میں لوگ کھل کر کھاتے ہیں, دبا کر جسے کہتے ہیں ہم اگر دیسی زبان میں یہ بات کریں کہ دبا کے کھاتے ہیں, تو یہ ان کے کھانے کی روٹین آپ نے یہاں پر کیسی دیکھی لوگوں کی؟
یہاں پہ مکس آف ایوری تھنگ ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے. جو انہیلدی کھاتا ہے وہ بہت انہیلدی کھاتا ہے, جو ہیلدی کھاتا ہے وہ ایکسٹریملی ہیلدی کھاتا ہے. لیکن ایک جو اگر آپ کہہ لو کہ ڈفرینس, اگر آپ چاہتے ہو میں پاکستان اور یہاں کے بیچ میں ڈفرینس بتاؤں, تو یہاں پہ کمپیریٹیولی تھوڑا کلین کھانا ہے, تھوڑا سا کم فرائڈ ہے. یہاں پہ ڈیپ فرائڈ کو نیچرلی ہی آسٹریلیا میں برا سمجھا جاتا ہے, یہاں اس کو نارم کریٹ ہی نہیں کیا جاتا. یہاں پہ آپ جس بھی ریسٹورینٹ میں جاؤ گے آپ کو 9 out of 10 لوگ وہاں پہ کلین کھاتے ہوئے دکھیں گے, گرلڈ کھاتے ہوئے دکھیں گے, پین فرائڈ کھاتے ہوئے دکھیں گے, ڈیپ فرائڈ کھاتے ہوئے نہیں دکھیں گے. اٹس اونلی ان فاسٹ فوڈ جہاں پہ لوگ آپ کو فاسٹ فوڈ کھاتے ہوئے دکھیں گے یا ڈیپ فرائڈ.
تو اس کنٹینٹ جس طرح آپ کریٹ کرتے ہیں تو لوگ فوڈ میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں یا پھر فٹنس کے حوالے سے یہاں پر لوگ؟
لوگ میرے تو آنیسٹلی کانٹینٹ میں انٹرسٹ لیتے ہیں میرے گانوں کی وجہ سے اور کوٹس کی وجہ سے. میری جو کوٹس ہوتی ہیں وہ بیسکلی لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں, اور جو گانے ہوتے ہیں وہ موٹیویٹ کر دیتے ہیں. میں کچھ ایسے سلیکٹیو گانے چوز کرتا ہوں. آئی تھنک یہی ایک ہیک ہے جس وجہ سے میرا کانٹینٹ کافی انگیجمنٹ ملی ہے مجھے. وہ یہ کہ गाने ऐसे मैंने सेलेक्टिवली चूज़ किए हैं जो आप बार बार सुनते हो, और फिर अगर ऊपर बात कुछ अच्छी लिखी हुई हो तो वैसे ही बंदा मोटिवेट हो जाता होता है। तो आप जितनी भी मेरी रील स्क्रॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आप पहली से स्टार्ट करेंगे, आप 30 तक जाएंगे, आप मोटिवेट ही होंगे। तो मेरा बेसिकली कोट ये 1% बेटर एवरी डे, उस चीज़ को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ बॉलीवुड स्टाइल में।
अच्छा, जब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई, अब वो लम्हा कैसा था और आपको लगा था उसके बाद कि नहीं मुझे इस पे काम करना चाहिए, किस चीज़ से मोटिवेट किया कि आपको भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए?
जी, इसके पीछे सब एक बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा था तकरीबन 1.5 साल से कंटेंट, और कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करता था, और मुझे 1.5 साल लगा, मेरे फॉलोअर्स थे 674 और 1.5 साल बाद मेरे फॉलोअर्स थे 620। मेरे फॉलोअर्स गिरे थे, बड़े नहीं थे
जी,
बट इट ओनली टुक 1 वीडियो। मुझे पता था कोई एक वीडियो ने छक्का लगाना है, कोई एक वीडियो अच्छी होगी जो निकल जाएगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हुआ, 1.5 साल बाद कोविड ख़त्म हुआ तो मेरी एकदम एक वीडियो वायरल हुई। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये थी, तब तक मेरा कंटेंट की क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी क्योंकि 1.5 साल से मैं करता आ रहा था, तो मैं सीख रहा था बेसिकली, तो क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो चुकी हुई थी। दूसरा ये था कि मुझे थोड़ा समझ आ गया था कि मैंने लोगों से रिलेट कैसे करना है। थर्ड, जो चॉइस ऑफ सॉन्ग थी मेरी उस गाने में वो काफ़ी अच्छी थी, वो डिफरेंट थी और वो काफ़ी पुशिंग थी, काफी मोटिवेटिंग थी। और फिर उसके बाद वो वीडियो
गाने की वजह से था या वीडियो में भी कुछ था ऐसा कि?
वीडियो में भी था, बिल्कुल था। उसके अंदर जिस तरह से मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह मैंने वो वीडियो स्टार्ट की थी, थोड़ा सा डांस था उसके अंदर, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। उसके अलावा आप ये देख लेंगे थोड़ा वो व्लॉग टाइप था जो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी था, अब तो खैर ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन वो नया नया व्लॉग का ज़माना था तो वो उस टाइप का था, मिनी व्लॉग जैसे बोलते हैं
जी। तो उमर, ये बताइए, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग बेसिक आज के लोगों के एक ही पर्पज़ है कि वायरल हो किसी न किसी तरीके से और डॉलर कमाए किसी न किसी तरीके से। तो इस सारी सिचुएशन में, सूरत हाल में, ओरिजिनल कंटेंट का क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, और आप क्या समझते हैं कि कैसे किया जा सकता है कि लोग कंटेंट भी अच्छा वो पब्लिश करें और इसके साथ वो वायरल भी हो और उनको वो उनकी अर्निंग भी हो?
देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे हो तो आपको सारी ज़िंदगी बनावट का ही कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनल अपनी लाइफ का कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो उसको आप सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि जहां बात वायरल आने की होती है वो ये होता है, इंसान वायरल हो जाता होता है, पर वायरल होने के बाद सस्टेन करना उसको और कंटेंट क्रिएट करते रहना, उससे कमाते रहना, ये ज़्यादा मैटर करता है। और ये आई थिंक तभी ज़्यादा अच्छे से होता है जब आप ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हो बजाय इसके कि आप बना के कर रहे हो। बनाने में बंदा थोड़ा अनईज होता है, अनकंफर्टेबल होता है, पर जब बंदे ने अपनी ऑडियंस को आदत डाल दी होती है, वही सुबह उठ के वही नाश्ता कर रहे, उसी बेड पे उठ रहा है, हर चीज़ जब रियल और ऑथेंटिक दिखा रहा होता है तो वो बनाना भी उसके लिए आसान होता है, तो वो उसको सस्टेन कर सकता है।
तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर लोग एक मखसूस वक्त देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ये नहीं कि हर वक्त बैठे हुए हैं, हर बंदा यहाँ पर मसरूफ है, तो यहाँ पे फॉलोअर्स जो हैं वो फॉलोअर्स और आपके बढ़ाना वो कितना आसान है या फिर यूं कह लीजिए कि कितना मुश्किल है?
देखें, आपको थोड़ा सा बस ये है कि सोशल मीडिया के जो टिक्स एंड ट्रिक्स हैं वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से, ये भी एक सिस्टम है जिसको आप हैक कर सकते हो, किस तरह आपको ऑडियंस से रिलेट करना आता है। जब आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझ लेते हो, इनके एल्गोरिथम्स को, फिर आप दुनिया के चाहे जिस मर्जी कोने में हो, आप जिम्बाब्वे में भी हो, आप पाकिस्तान की अवाम को या इंडिया की अवाम को या ऑस्ट्रेलिया की अवाम को, जिसको आप अपनी ऑडियंस बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। तो बेसिकली ये है कि आपको नॉलेज कितना है इस सिस्टम का, आपने जब वीडियो डालनी है तो कब डालनी है, आपने क्या वीडियो डालनी है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, और क्या यूज़ करना है, कुछ हट के यूज़ करना है, कुछ अपना यूज़ करना है। तो जब आपको समझ आ जाती है इंग्रेडिएंट्स की सोशल मीडिया की, आई थिंक तब उसके बाद आप
तो ये इस पे ये भी बताइए कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं, नौजवान हैं, तालिबे इल्म हैं, चाहे वो लड़के हों या फिर लड़के, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा इजाफा है सोसाइटी के लिए या नौजवानों को तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए?
देखिए, आई थिंक अगर तो ये तालिबे इल्म, ये जो यूथ हैं हमारी, ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, एक अच्छी चीज सिखा रही है या एक अच्छी चीज प्रमोट कर रही है, तो आई एम ऑल फॉर इट. करना चाहिए, मजीद करना चाहिए. अगर आप इससे अर्न कर रहे हो तो इट्स इवन बेटर. पर अगर आप गालियां देकर फेमस हो रहे हो, अगर आप वाहियात कंटेंट अपलोड करके फेमस हो रहे हो और उससे कमा रहे हो, तो वो तो जाहिर है फिर एक्सेप्टेबल नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए. उसके मैं टोटली अगेंस्ट हूँ. तो बस बात ये कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो, ये एक बेसिकली है तो जॉब टाइप ही, पर आप कर क्या रहे हो, किस तरीके से आप उसमें फ़ायदा हो रहा है लोगों का या नुकसान हो रहा है लोगों का.
अब पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं या साथ नौकरी कर रहे हैं तो साथ ये भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई या फिर नौकरी मुतासिर होती है अगर आप फुल टाइम ये भी साथ कर रहे हैं?
देखें, मेरा नहीं ख्याल होती है, जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जिसने साथ नौकरी भी अच्छी करनी होती है कर लेती है. मैं जिस टाइम पे मैंने अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया था, मैं भी एक स्टूडेंट था और साथ मैं भी जॉब कर रहा था और साथ कंटेंट क्रिएट कर रहा था. अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद स्टडी भी कम्प्लीट हो गई, जॉब भी हो गई और कंटेंट भी आपके सामने है, तो जिसने करना होता है वो कर लेता है.
अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह हमने बात की फूड के बारे में, भी आपने बात की फिर फिटनेस के बारे से, तो वेल बीइंग के बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि कितना जरूरी है और आपको लगता है कि यहाँ पर यहाँ की सोसाइटी के जो लोग हैं वो कितना अपना ख्याल रखते हैं?
जी नहीं, वेल बीइंग बहुत ज़रूरी है. और वेल बीइंग में अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो ये है कि वेल बीइंग के दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली. एक होता है सेल्फ अवेयरनेस और एक होता है सेल्फ डेवलपमेंट. आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, और आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत लाजमी है. आप चाहे दिन की 10 किताबें भी पढ़ लो सेल्फ डेवलपमेंट की, आप डेवलप नहीं करोगे जब तक आपको अपनी बारे में अवेयरनेस नहीं है. आपको पता होना चाहिए आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आपको परेशान करती हैं, क्या चीज़ें आपको खुश रखती हैं. जब आप अपने आप से अवेयर होते हो तो उसके बाद यू कैन वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर सेल्फ, तो वो बहुत ज़रूरी होती है. और ये चीज़ें सारी मैं यहाँ आकर सीखाऊँ. वो कैसे सीखाऊँ? जब गैदरिंग ही ऐसी है, जब लोग ही ऐसे हैं, जब कंटेंट ही ऐसा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ डेली. यहाँ आते सार मैं डकी भाई और रजब भट्ट तो सुन नहीं रहा, यहाँ तो आते सार मैं अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ. तो उस वजह से मैं इस तरफ बढ़ाऊँ. उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, क्या खूबियाँ. अभी तक आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और उस चीज़ को लेते हुए आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग माई सेल्फ, एंड दैट्स रियल सेल्फ डेवलपमेंट एंड दैट्स रियल वेलबींग.
जी उमर सलीम, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और फिटनेस, वेलबींग और फूड के हवाले से खुलकर बात की.
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.